शॉकिंग ट्रूथ रिवील। आस्था ने जैसे ही मासूमियत से ये कहा, वैसे ही अरमान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और उसने उसके माथे को चूम लिया। अब आगे कुछ देर बाद नानी माँ ने भी आगे बढ़कर आस्था को गले से लगाया और दबी हुई और धीमी आवाज में बोली, गोरी तुम बिटिया अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है? और तुम यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे और सबका अच्छी तरह से ख्याल भी रखेंगे, ठीक है? बिटिया संभाल कर ध्यान से जाना, और हाँ, अंश बेटा का बहुत ध्यान रखना, और अगर कभी उसको लेकर कोई बात समझ में ना आए तो तुरंत ही हमें, जो हमें आहान बिटवा ने फ़ोन दिलाया है, तुम इस पर वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है? हम तुम्हें सारी जानकारी समझा देंगे। अब ये सुनकर आस्था पलके झपकाकर मुस्कुराई और रश्मि, राधिका, वंशिका साथ ही साथ रौनक के गले से लगकर वहां से जाने लगती है। वहीं रौनक ने आस्था का हाथ पकड़कर एकदम से उसे देखते हुए कहा, आस्था तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, तुम तो जानती हो ना, 2 महीने बाद मेरा भी बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और तुम तो ऑलरेडी एक बेबी डिलीवर कर चुकी हो, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई होगी, इसलिए तुम्हें मेरी इस मामले में मदद करनी होगी, ठीक है? तो तुम्हें वापस आने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, प्लीज़। जैसे ही रौनक ने एकदम तड़क भड़क अंदाज में ये कहा तो ये सुनकर आस्था मुस्कुरा रही थी। वहीं आहान, सुमित, आकाश और ध्रुव बारी बारी से आस्था से मिलते हैं। लास्ट में आस्था ने दादाजी के पैरों को छुए और अभिमान जी से भी आशीर्वाद लिया था। इस वक्त अभिमान जी और दादाजी दोनों का ही दिल उदासी से भरा हुआ था, जिन्हें आस्था महसूस कर चुकी थी, और वो दादाजी के गले से लगकर शांत आवाज चिंता के साथ पूछती हैं, क्या बात है दादाजी? अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। तब दादाजी समझ गए कि आस्था ने उनकी बेचैनी भांप ली है, तो उन्होंने आस्था को दर्द भरी आंखों से देखकर कहा, बच्चे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस तुम ध्यान से जाना और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, हम थोड़े से मायूस हैं क्योंकि हमारा अंश भी कुछ दिनों के लिए जा रहा है ना, तुम तो जानती हो अंश सभी का खिलौना बन चुका है। फिलहाल हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी भी नहीं कर सकते। कितने सालों से तुम अपने दादाजी से दूर रही हो, और तुम फिक्र मत करो बिटिया, जैसे ही हमारा दिल भी करेगा हम लोग भी वहाँ आकर तुम्हारे दादाजी से ज़रूर मिलेंगे। जैसे ही दादाजी ने ये बोला वैसे ही आस्था मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया, और जल्द ही अविनाश एंजल पूरे सामान के साथ वहां मौजूद था और अविनाश भी सभी से अच्छी तरह से मिलता जुलता है। वहीं एंजल नानी माँ के गले से लगकर कितनी ही देर तक खड़ी रही और फिर बारी बारी से रश्मि, राधिका और वंशिका रौनक से भी मिलती है, क्योंकि जो अपनापन इतने कम समय में एंजल को इन सब से मिला था वो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला था, और कहीं ना कहीं ये सोचकर एंजल की आंखें आंसुओं से भर भी रही थी। वहीं अविनाश भी नानी माँ के सामने झुकते हुए आशीर्वाद लेने के बाद बोला, इस बार तो मैं सिर्फ रौनक और रश्मि के लिए आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ नानी माँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको वापस लेने आऊँगा और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। अब ये सुनकर आहान का मुँह बन गया और वो ध्रुव के कानों में सरगोशी करते हुए गुस्से से बड़बड़ाया, क्या मैं आस्था भाभी के भाई को अच्छे से जवाब दे दूं? तुमने देखा ना, वो हमारे घर में खड़ा होकर हमसे नानी माँ को छीनने के बारे में बात कर रहा है। अरे नानी माँ के लिए तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, पर नानी माँ को अपने हाथों से कहीं जाने नहीं देंगे। जैसे ही आहान ने थोड़ा फिल्मी स्टाइल में ये कहा तो ये सुनकर ध्रुव को एकदम से हंसी आ गई थी, और उसने तुरंत आहान का हाथ पकड़कर खींचा और उसे धीमी आवाज में समझाया, कोई बेवकूफ़ी मत करना, उन्हें जाने दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अरमान भाई आस्था भाभी और अंश को यहाँ से दूर क्यों भेज रहे हैं, इसका मतलब समझते भी हो तुम। इस समय तुम थोड़ा शांत रहो और अपना दिमाग थोड़ा कम चलाओ। अब ध्रुव की बात सुनकर आहान तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। फिलहाल जल्द ही चौपर रुकने की आवाज़ सिम्हानिया मेंशन के टेरिस पर सबको सुनाई देने लगी। तब आस्था की आंखें हल्की नम हो गई थी, उसने अरमान की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। अरमान भी आस्था को ही गौर से देख रहा था। जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा तब अरमान ने आंखों ही आंखों में आस्था को शांत रहने का इशारा किया, अपने चेहरे के भाव से उसे समझाया कि वो अपना बहुत ख्याल रखें और यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो है ना, वो बेफिक्र होकर जाएं, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। कहीं ना कहीं अरमान की आंखों के इशारे समझकर आस्था ने हामी भरते हुए अपनी पलकें झपकाई और गहरी सांस लेते हुए खुद के इमोशंस को संभाल कर फाइनली उसने स्माइल करते हुए सबको गुड बाय किया और सिंघानिया मेंशन के टेरिस पर आ गई। और अविनाश और एंजल जल्दी चौपर में बैठ चुके थे और आस्था भी अंश को लेकर बैठ चुकी थी, और जल्द ही सिंघानिया मेंशन से अविनाश का चौपर उड़ान भर चुका था आस्था और एंजल को लेकर। वहीं उनके चौपर के उड़ान भरते ही अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। इस वक्त अरमान के हाथ में एक तेज धारदार वाला छोटा सा चाकू था जो अरमान के हाथों में बुरी तरह से गड़ रहा था। वहीं अरमान आस्था के उड़ते हुए चॉपर को शांत नजरों से देखकर बोला, मैं तेरी दुनिया पूरी तरह से हिलाकर रख दूंगा। तेरी वजह से मुझे अपनी बीवी अपने बच्चे से दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं तेरी बुनियाद हिला दूंगा। अब देख अरमान सिंघानिया तेरी जिंदगी में क्या तबाही मचाएगा, ब्लैक डेविल। ये बोलते हुए अरमान बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा था और सीधा वह अपने कमरे में चला आया, लेकिन तब तक उसके हाथ से निकली हुई कुछ खून की बूंदें जमीन पर जा गिरी थीं, जिन्हें आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान ने नोटिस कर लिया था और चारों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे थे। वहीं ध्रुव तेज कदमों से अरमान के कमरे की ओर जाने लगा ताकि वो उसके हाथों की ड्रेसिंग कर सके। वहीं आस्था के जाने के बाद राधिका, साथ ही साथ वंशिका, रौनक और रश्मि चारों के चारों मायूस होकर हॉल में बैठ गई थी। नानी माँ भी मायूसी से उनके पास ही बैठी हुई थी। कुछ पल सोचते हुए रौनक तुरंत ही बोल पड़ी, आस्था 15 दिन के लिए गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं उसे अभी से मिस करने लगी हूँ। ये 15 दिन कैसे कटेंगे उसके बिना, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बिना रह पाऊंगी। तभी वंशिका और राधिका भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाकर बोली, हाँ अभी से ऐसा लगने लगा है कि 15 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए हैं और अभी केवल 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 15 दिन हम लोगों से कैसे गुजारेंगे। वहीं उन सबकी ये बातें सुनकर नानी माँ हल्का सा मुस्कुरा उठी कि ये सब लोग आस्था बिटिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए उनकी आंखों में भी नमी थी। तब नानी माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और वो उनकी ओर देख के एकदम से बोली, पता है मेरी गोरी ने अपनी पूरी जिंदगी तन्हाई में गुजारी है। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ रिश्ते के नाम पर अगर उसके पास कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ मैं थी, एक माँ। लेकिन अब मेरी गोरी की जिंदगी में उसकी चार चार प्यार करने वाली बहनें हैं। सचमुच ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, जो उसे इतना बड़ा और प्यारा करने वाला परिवार मिला। इतना बोलते ही नानी माँ ने अचानक से हवा में हाथ फैलाते हुए अपनी बाहों को खोल दिया और सभी ने आकर नानी माँ को गले से लगा लिया था। वहीं अभिमान जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। दादाजी भी उस वक्त वहीं उनके साथ मौजूद थे।
उस समय अभिमान जी की आंखों में हल्की सी उलझन थी। अगले ही पल वो दादाजी से बोले, आपको क्या लगता है पिताजी, जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही रहेगा? अगर इस तरह से वो लोग घर में आए तो हमारे हंसते खिलते परिवार का क्या होगा? हम इन सब में ये बात नहीं भूल सकते हैं कि वसुंधरा कितनी ज्यादा चालबाज और जालसाज औरत है। वो अपनी भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है और मुझे नहीं लगता कि उस जैसी औरत को इस परिवार में आना चाहिए। मेरे हंसते खिलते परिवार को उस जैसी गंदी औरत की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही अभिमान जी ने ये कहा, वैसे ही दादाजी थोड़ा हैरानी भरे एक्सप्रेशन से बोले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा कि तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों में हम एक बात नहीं भूल सकते कि तेरा खून उसके पास है। तू यकीन जान, जब से मुझे ये पता चला है कि वो लड़का तेरा खून है, तब से सिर्फ अपने आप ही उसके लिए मेरे दिल में जज्बात पैदा हो गए हैं। मेरा दिल उसे देखने के लिए मचलने लगा है। हाँ, आज से पहले भी वो मुझे मिला है, लेकिन मैंने सिर्फ उसे नफरत भरी नज़रों से ही देखा है, क्योंकि मुझे उसका सच नहीं पता था बेटा। और वसुंधरा ने इतना बड़ा सच हम लोगों से इतने सालों तक छुपा कर रखा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो इतनी घटिया चाल चलेगी। लेकिन बेटा, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हम इस तरह से भला अपने खून को उस जैसी औरत के साथ अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मैं जानता हूँ कि वो लड़का भी हमसे नफरत करता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का असली चेहरा आएगा तो वो ज़रूर हमारी बात को समझेगा और हमारे साथ रहने के लिए मान जाएगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वैसे ही अभिमान जी अगले ही पल के लिए चुप हो गए थे। अभिमान जी का उदास चेहरा देखकर दादाजी ने अपने शब्द कहने से रोक लिए और कुछ ना कहते हुए अभिमान जी सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगे। तब दादाजी भी उन्हें समझाने के लिए उनके पीछे पीछे धीमे कदमों से जाने लगते हैं। जैसे ही अभिमान जी कमरे में पहुंचे और अपने कमरे की लाइट जलाई तो वो पूरी तरह से सकपका से गए थे, क्योंकि उन्हें अपने कमरे की कुर्सी पर अरमान सिंघानिया पावरफुल ओरा के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया था। ध्रुव, जो कि अरमान सिंघानिया की ड्रेसिंग करने के लिए गया था, लेकिन ध्रुव अरमान को कहीं ढूंढ ही नहीं पाया था, ना ही उसे अरमान कहीं नजर आया। अब अभिमान जी ने जैसे अंधेरे में अरमान को यूं अपने कमरे में बैठा हुआ देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वही दादाजी, जो कि अभिमान के पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अरमान को अभिमान के कमरे में देखा वो एकदम से चौंक पड़े, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगर अरमान इस तरह उखड़े अंदाज में बैठा है तो जरूर वो सारा सच जान चुका है। फ्लैशबैक, अरमान जो कि उस वक्त अंश के साथ दादाजी से मिलने के लिए जा रहा था और अंश आस्था के जाने वाली बात उन्हें खुद बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अभिमान जी के कमरे के बाहर पहुंचा वैसे ही उसने डीएनए वाली बात अभिमान जी और दादाजी के मुंह से सुन ली थी। उसके बाद उसने फार्म हाउस की सिक्योरिटी फुटेज चेक किए, जिसमें वसुंधरा ने अभिमान जी को किस तरह से वीर की सच्चाई बताई थी, ये देखकर वो भी अब सारी बातें जान चुका था
और रह रहकर उसके दिमाग में बचपन की वो सारी यादें उभरने लगी थी। फ्लैशबैक एंड। अरमान उठा और अपने पिता और दादा के पास आया और बारी बारी से दोनों को सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी दादाजी अरमान की ओर देखकर जल्दी से बोले, अरमान इसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अगर वीर तुम्हारा भाई है तो हमें उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए, और वैसे भी उसने हमारे अंश की जान बचाई है। तुम जो कहोगे जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही दादाजी ने अब साफ शब्दों में अरमान से ये कहा, वैसे ही अरमान ने केवल सपाट लुक उन दोनों को दिया और अब अरमान दो कदम आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर उन लोगों की ओर देखते हुए गहरी आवाज में बोला, ऑलरेडी मैंने उन दोनों को लेने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया है, और हाँ उनके लिए नीचे वाले कमरे भी तैयार करवा दिए गए हैं। लेकिन एक बात आप दोनों याद रखना, आप दोनों अपने अपने तरीके से उन दोनों को बदलने की कोशिश कर सकते हो, और हाँ वसुंधरा रामचंद्र मेरी माँ नहीं है, ना ही मैं कभी उसे अपनाऊंगा, और ना ही वीर को मैं कभी भी अपना भाई मानूंगा, क्योंकि मैंने उसे हमेशा से ही अमरेंद्र के बेटे के रूप में देखा है, इसलिए मैं उसे इस तरह से अपना सगा भाई कभी नहीं मान सकता हूँ, और मैं आप लोगों के इमोशन के साथ भी खेलना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब से आप लोगों को ये पता चला है कि वीर आपका बेटा है, आप उससे मिलने के लिए तरस रहे हैं। अच्छी बात है, एक पिता को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत तो होनी ही चाहिए, और मेरे यकीन जाने मैं आप लोगों की मोहब्बत के बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर वीर और वसुंधरा ने मेरे हंसते खेलते परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उस वक्त आप दोनों बीच में नहीं आएंगे। अरमान की बातों में अनकही वार्निंग छुपी हुई थी। अरमान ने जैसे ही एक एक शब्द चबा चबा कर धीमे स्वर में समझाया, वैसे ही अभिमान जी और दादाजी के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था अरमान के दिमाग में, और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में?